बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस कॉल में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम जो हैं वो आप बाकायदगी से देख रहे होंगे। आपको बताते चलें कि आज का हमारा जो मौजू है वो हमारी जो कुछ लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उसके हवाले से है, लेकिन डिटेल में आपको बताते हैं कि किन किन एस्पेक्ट्स में बात होगी। अली को इंट्रोड्यूस करते चलते हैं। अली हमीद हमारे साथ हैं, हमारे कोच।
बहुत
कैसे हैं अली?
शुक्रिया जी, हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जहमत के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेकर आए, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। काइंडली बताना पसंद करेंगे आपके हमारा जो आज का मौजू है किस हवाले से है?
बिल्कुल, मैं मौजू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपके पार्टिसिपेशन के हवाले से। आज का मौजू बड़ा अहम है हमारी सोसाइटी को। अगर देखा जाए जुबान की जो पेचीदगी है, हम इस एक मुब्तला रहते हैं, इस कन्फ्यूजन के अंदर रहते हैं कि हमें उर्दू में बात करनी है या हमें अंग्रेजी में बात करनी है, या कभी कभी हम अंग्रेजी बोलते बोलते उर्दू की तरफ जंप कर जाते हैं, या कभी उर्दू बोलते बोलते हमें एक दौरा सा पड़ता है कि हमें अंग्रेजी बोलनी है जिससे हम अपनी एक पर्सनैलिटी का कोई इम्पैक्ट बना सकते हैं। इसी तरह जो हमारी एकेडेमिया के अंदर डिवीजन है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और इस एकेडेमिक डिवीजन ने बाद में एक क्लास डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि एक इंग्लिश मीडियम क्लास क्रिएट हो गई है, एक उर्दू मीडियम क्लास क्रिएट हो गई है। जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनको समझा जाता है कि शायद ये मुझे कहने दीजिए माजरत के साथ कि ये लोअर मिडिल क्लास है तबका है, ये एक पेंडू तबका है, और जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं जिनकी उर्दू या जुबान अपनी जुबान पर जिनको अबूर हासिल नहीं है उनको समझा जाता है गोया ये बड़े क्वालिफाइड लोग हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। ये कन्फ्यूजन हमारी सोसाइटी में ओवरऑल पाई जाती है। इस पर डिस्कस करने के लिए हमने आज इस उनवान का इंतखाब किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पैनलिस्ट में यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एहसन अब्दुल्ला। एहसन अब्दुल्ला स्टूडेंट हैं और बहुत बहुत शुक्रिया एहसन अब्दुल्ला आपका। हमारे साथ एक्सपर्ट्स दो मौजूद हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं आयशा गाजी। आयशा गाजी मीडिया एंड कम्युनिकेशन से ताल्लुक रखती हैं, और कराची से हमारे साथ मीडिया एक्सपर्ट मौजूद हैं नुसरत अब्बास। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की तरफ आएँ, मैं आपको बताता चलूं कि आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूं कि तीन तरीके हैं पार्टिसिपेट करने के, सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें ट्विटर और फेसबुक और गूगल प्लस है। ट्विटर पे आप हमें रेलेवेंट ट्वीट्स सेंड कर सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर सकते हैं, गूगल प्लस पे आप अपने वीडियो कमेंट्स भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बात शुरू करेंगे हम अपने एक्सपर्ट पहले जो यहाँ पे मौजूद हैं नुसरत अब्बास से, कि वो किस तरह से इस जुबान की वजह से पाए जाने वाली एक हमारे दरमियान एक मैं कहूंगा कि पेचीदगी है, उसको किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी मुआशरे के जो है पर्सपेक्टिव में। जी नुसरत अब्बास
जी, बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया अली और मोहतशिम। हमेशा की तरह जो है आप एक मुख्तलिफ मौजूआत लेकर जो आते हैं जो कि वाकई आज के माशरे की जरूरत है कि इनको बाकायदा माशरे में इसकी अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाया जाए। जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक है तो देखें, जबान जो है वो वजाते खुद बुरी नहीं है कि मसलन कोई शख्स कोई जबान बोलता है या कोई शख्स किसी और जबान इंसान जितनी भी जाने तो वो तो उसकी इल्म में इजाफा करती है और उसकी जो महारत है उसमें भी इजाफा करती है। एक शख्स को पांच जबानें आती हैं या दो जबानें आती हैं, लेकिन उसके असरात जो कि हम अपने माशरे पर देखते हैं कि वो लोग जो है को क्लास डिफरेंस पैदा हो गए हैं या लोग इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं। एक शख्स को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वो ये समझता है कि उसको कुछ नहीं आता, और एक शख्स जो है कि इंग्लिश बोलता है तो ये समझता है कि उसको बहुत कुछ आता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी एक मिसाल के तौर पर, अब वो वेस्ट कंट्रीज में चले जाएं तो वहाँ तो गाँव देहात में भी इंग्लिश बोलते हैं चाहे वो लिखे ना भी हों। तो ये बिल्कुल कोई मुवाजना नहीं है कि अगर इंसान को अगर इंग्लिश आती है या कोई और जबान आती है। मसला ये होता है कि बाशऊर इल्मी शऊर कहाँ है, लेकिन क्योंकि माशरा इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, जिस तरह आपने खुद जाहिर किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल उर्दू मीडियम स्कूल इन दोनों को एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत सही नहीं है। इंसान को अपनी जाती जबान जो उसकी माजी जबान है उसको उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसी को परवान चढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर काम होने चाहिए, उसकी नए जो है वो लगत में उसके इजाफा होना चाहिए। जिस तरह बाकी जबानों में हम देखते हैं कि दिन ब दिन अरबिक जो लैंग्वेज, हालांकि बहुत सबसे जो ज्यादा समझ लेकिन जरफियत रखती है वो अरबी जबान है, लेकिन उस अरबी जबान में अभी भी नई जो अल्फाज या नए जो चीजें आ रही हैं उनके लिए नए अल्फाज बनाए जा रहे हैं, बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं जो नए अल्फाज को लेकर आ रहा है। मिसाल के तौर पर मोबाइल है तो मोबाइल का शायद उर्दू में जो वर्ड ना हो लेकिन अरबी ने उसके लिए एक वर्ड बनाया, एक कलमा बनाया है कि जिसको मतलब अरबी में उसको जवाल कहते हैं। इसी तरह फारसी के अंदर मोबाइल है तो उसको हमरा कहते हैं, हम टेलीफोन हमरा, इस तरह की चीजें उर्दू के अंदर मुतासिफाने काम भी नहीं हुआ एक तरह से। तो दूसरा एक दायरा हमारा माशरा, हमारी यूथ भी जो है वो दूसरी तरफ जा रही है। जी
जी
अली,
बहुत शुक्रिया नुसरत भाई आपके इस ओपिनियन का। हम मूव करेंगे अपनी सेकंड एक्सपर्ट प्रोग्राम की आयशा गाजी की तरफ। आयशा गाजी, आप कैसे देखती हैं इन सारे मसाइल को जिनकी तरफ मैंने प्रोग्राम के शुरू में इशारा किया और नुसरत भाई ने भी उस पर अपने कमेंट्स दिए? जी
जो मुझसे पहले एक्सपर्ट बात कर रहे थे उनकी बात में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने लैंग्वेज में वर्ड्स ऐड करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपको अपने लैंग्वेज की जरूरत क्यों है, व्हाई डू यू नीड अ लैंग्वेज, जब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो आपका पर्पज सर्व कर रही है। अगर जुबान की आपको जरूरत सिर्फ एक कम्युनिकेशन पर्पजेज के लिए है तो आपको क्या जरूरत है उर्दू जुबान की या अपनी किसी भी जुबान को आगे लेके चलने की। सबसे पहले तो आपको ये बात करने की जरूरत है कि आखिर आपको अपनी जुबान की जरूरत क्या है। मेरी जाती तौर पर राय यह है कि आपकी जुबान जो है वो आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल इनहेरिटेंस है, उसके अंदर आपकी एक विरासत होती है, उसके अंदर आपकी एक विजडम होती है। अगर तो आपको अपने विरासत, आपको अपने विजडम इन सबको आगे लेके जाने की जरूरत है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जुबान को जिंदा रखने की जरूरत है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा हमारे पास एक इस बात का गैप है कि हमें अब तक अपने लैंग्वेज की जरूरत मालूम नहीं है। इन सब चीजों पर बहस करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि हम इस बात पर बहस करें और अपने आप के सामने ये बात लेकर आए कि हमें आखिर अपनी जुबान की जरूरत क्या है। इस जुबान के अंदर हमारे वो कौन से विजडम, ईस्टर्न विजडम, या हमारी कौन सी विजडम छुपी हुई है, हमारे कौन सी तहजीब छुपी हुई है जिसको आगे लेके जाना हम चाहते हैं।
सही। तो आप अपने इस पॉइंट को आयशा किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करती हैं? जुबान की जरूरत पे तो हमने बात की, नुसरत भाई का भी मादरी जुबान से जहां तक मैं समझा ये हूं, उनसे ओपिनियन दोबारा इस बात पे भी लेते हैं कि अपनी जो नेशनल कौमी जुबान की बात वो कर रहे थे, उन्होंने अरेबिक की एग्जाम्पल भी इसीलिए दी, उर्दू की तरफ उनका इशारा था कि जब पाकिस्तान के उसमें बात की जाए पैराए में, तो ये हो कि किस तरह से आप अपनी उर्दू जुबान को परवान चढ़ा सकते हैं। और उनका ओपिनियन जिस पे था कि आपको अपनी जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए काम करना चाहिए, मोबाइल की एग्जाम्पल दी कि फारसी और अरबी दोनों में मौजूद हैं, इसके असमा मौजूद हैं, लेकिन उर्दू में अभी तक आप मोबाइल को मोबाइल ही बोलते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आप हेरिटेज या विरसे को आगे लेके जाने की बात करती हैं और पैरेलल में या इसके मुतवाजी कोई काम नहीं हो रहा है जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए, तो ये कैसे आगे जाएगा, आपका क्या ख्याल है?
इस तरह आपने कहा कि हमारे उर्दू जुबान में कोई काम नहीं हो रहा, इसकी तरक्की और तरवीज के लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि आखिर इस पे काम क्यों हो, हमें अपनी जुबान की हमारे लिए अहमियत क्या है जिसके लिए हम काम करें। अगर हम किसी चीज में अपनी एफर्ट पुट करते हैं, हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं, हमें सबसे पहले उसकी अहमियत को अपने सामने रखने की जरूरत है। जिस चीज के अंदर हम बिलीव नहीं करते थे ये अहम है, हम उसमें अपनी कोशिश नहीं डाल सकते जिस हद तक उसको डाला जाना चाहिए। तो आप अपनी जुबान को कितनी अहमियत देते हैं, आप सबसे पहले तो ये बात है कि आप अपने आप को बहसियत एक कौम कितनी अहमियत देते हैं, आप अपने कल्चर को कितनी अहमियत देते हैं, क्योंकि आपकी जुबान आपके कल्चर को, आपकी कौमियत को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। अगर तो आपको लगता है कि आप इतने अहम हैं कि आपको इन सब चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए, तो फिर आप अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए कि ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा, अगर आप इस बात को अहम समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक मुश्किल बात ये, सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये हो गई है कि हमने तालीम याफ्ता तबके और गैर तालीम याफ्ता तबके के अंदर जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज के ऊपर बेस कर दिया है कि उर्दू जो है वो जरा कम पढ़े लिखे लोगों की जुबान है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जुबान इंग्लिश है। इवन ये कि घरों में आम बोलचाल में भी, दफ्तरों में भी, मैं पाकिस्तान में ही देखती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यही प्रीफर करते हैं कि वो इंग्लिश में बात करें। जब आप अपने लैंग्वेज को खुद ही प्राइड के साथ नहीं लेते हैं, यू आर नॉट प्राउड ऑफ इट, आप उस पर बिल्कुल प्राउड फील नहीं करते हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी अगली जनरेशन तक वो चीज़ पहुंचेगी। इसको सबसे पहले अहमियत इस बात की है कि आप उस पर कम से कम प्राउड फील करें अगर आप उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस सारे जमीन में सबसे अहम किरदार जो अदा कर सकते हैं वो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग हैं जो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं और उर्दू भी जाहिर है कि वो तो उनकी अपनी जुबान है, वो फ्लुएंटली बोलते हैं। जब तक वो लोग अपनी जुबान को प्राइड के साथ नहीं बोलेंगे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपनी अगली जनरेशन तक अपनी जुबान को एज इट इज पहुंचा सकते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह मैं अपने कॉलम लिखती हूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं, मैं उर्दू में भी लिख सकती हूँ, इंग्लिश में भी लिख सकती हूँ, बल्कि इंग्लिश में लिखने का फायदा ये है कि उसके उसकी रीडरशिप बढ़ जाती है, मुझे मालूम होता है कि ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन बात यह है कि मैं जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, जिन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, मैं अपना कॉलम उनकी जुबान में क्यों ना लिखूं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पढ़ तो सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग जिस तरह से आपकी अपने जुबान के साथ एसोसिएटेड होती है, जिस तरह से आपकी अपनी जुबान डायरेक्टली आपके जहन और दिल पे असर करती है, उस तरह से चाहे जो भी हो एक फॉरन लैंग्वेज नहीं कर सकती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस बात में है कि आप इस उर्दू की अहमियत को पहले उजागर कीजिए।
बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स थे और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने जो इस प्रोग्राम में मेंशन करना चाह रहे थे कि क्या हम लोग नहीं समझते, या आप लोग बीइंग एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, या हमारे साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट ऐसे मौजूद हैं, कि एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इजाद हुआ इस लैंग्वेज की वजह से। ये एग्जिस्ट करता है हमारे माशरे में, हम लोग उससे जितना मर्जी हम लोग उसको निगेट करते रहे, कहते रहे नहीं जी ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक एस्पेक्ट है कि जो हमारे अंदर इन्वॉल्व है और हम पर असरअंदाज भी हो रहा है। क्या आप लोग नहीं समझते ऐसा? मैं एसन से चाहूंगा ताकि उसके बाद फिर हमारे एक्सपर्ट्स कहें। जी एसन।
मैं ये समझता हूँ कि हमने इंग्लिश जुबान को बहुत पहले ही अपने एजुकेशन सिस्टम में इस तरह इंडल्ज की जैसे कंपल्सरी है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि आपने डिफेंसेस अपने गिरा के एक आउट मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज को आपने उसको अपने ट्रेडिशन का हिस्सा बना दिया, कल्चर का हिस्सा बना दिया, गैर समझे बूझे। मतलब उर्दू भी आपकी मतलब प्राइमरी में या हायर एजुकेशन मतलब हायर सेकेंडरी तक एक वैलिड लैंग्वेज है, उसमें सारा मटेरियल मवाद मौजूद है, इवन टेक्स्ट बुक्स भी आपकी 10th तक जो है जो साइंस और केमिस्ट्री बायोलॉजी की उर्दू में अभी भी मौजूद है,
बिल्कुल
पहले
सही
भी मौजूद
बात।
थी। तो आपको चाहिए था कि आप इंग्लिश को एक एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज रखें, जैसे आपने अरबी फारसी और बाकी लैंग्वेज को ऑप्शन रखकर बाहर मुल्कों में भी जहाँ पे आप फ्रेंच को जर्मन को ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने आप इंग्लिश को कंपल्सरी कर दिया, हर बंदा वो सीखता है। तो जब एजुकेशन में कंपेटिटिव जगह वहां पे अगर आप एक चीज में एक्सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्राइड फील करते हैं, और जो उसमें एक्सेल नहीं करेगा उसमें प्राइड फील नहीं करेगा। तो आपने उर्दू को एज अ फॉर ग्रांटेड ले लिया, इंग्लिश को आपने इतनी अहमियत दे दी कि आपको उसको सीखना है, आपको उसमें अच्छे ग्रेड्स देने हैं, आपका आगे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपका सोशल उठना बैठना इस पर डिपेंड करता है। आपका मीडिया कहता है कि हमारी ये प्रोग्राम इंग्लिश में, आपकी सेलिब्रिटी आती है वो अपनी कोटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उनका इंटरव्यू हेलो हाय से स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली एक सोशल इफेक्ट तो आता ही उन चीज़ों का। तो इसको बहुत एजुकेशन लेवल से देखने की ज़रूरत है कि हम इसको वहाँ से निगेट करें। निगेट करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बाहर निकाल पाएंगे, आप अपना जो लिटरेचर है उसको उर्दू में कन्वर्ट करें और ऐसी उर्दू में कन्वर्ट करें जो आज के दौर के हिसाब से है, ये ना कि वो जी 50 साल पहले जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे वही अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं और वो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। मतलब अब इंग्लिश ने भी ट्रांजिशन की है सिंपलिसिटी की तरफ, उर्दू अभी भी अदब समझा जाता है। मतलब तो अगर आप किसी मतलब मेरे जैसे किसी बंदे से पूछे कि आप उर्दू में कोई बात तो समझेगा, कोई मोटे मोटे दो तीन मुश्किल से अल्फाज बोलने, हालांकि हम रोज उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन उसको अदब समझा जाता है, उसको इकबाल समझा जाता है, उसको गालिब समझा जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा खत्म करने की जरूरत है, इसको दिखाने की जरूरत है कि हम बोल सकते हैं आपके साथ भी और हर किसी के साथ। तो
जी
डेट्स
जी बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की इस हवाले से। लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है और ख़ासतौर पे हमारे माशरे में जहाँ पर हम उर्दू स्पीकर्स मौजूद हैं, और इंग्लिश का जो हम लोगों को इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश और उर्दू दोनों अलिफ और ए एक ही साथ शुरू करते हैं हम लोग, और एक तरह से अगर
इसमें एक
देखा जाए
छोटी
तो
छोटी सी बात ऐड करना
जी जी
चाहूंगा।
जी जी बिल्कुल
हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, वहां पर उन्होंने कहा जी कि आप सारा कुछ निकाल दें, इंग्लिश आपने क्यों रखी हुई है, सारा कुछ निकाल बाहर फेंकें। तो उसमें एक छोटी सी बात यह आती है कि आपने पिछले 20 साल से कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया, आपकी कोई डिग्री इस टाइम पे मेरे ख्याल में उर्दू में हो ही नहीं सकती, टेक्स्ट बुक्स ही मौजूद नहीं उर्दू में। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ना इंजीनियरिंग की बुक उर्दू में अवेलेबल है जो आप एज अ टेक्स्ट बुक, मे बी कोई रेफरेंस बुक अवेलेबल हो लेकिन उर्दू में कुछ अवेलेबल नहीं है। तो आप या तो बहुत एक्सट्रीम एक तरफ चले जाते हैं कि निकाल बाहर फेंकिए और फिर आपको मुंह के खानी पड़ती है और आपके ठंडे होते बैठ जाते हैं, ये बहुत सोच से समझने की बात है, इसका बहुत आराम से और दोनों चीज़ों का साथ लेके चलने वाली बात।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक कमेंट मेंशन करना चाहूँगा। हमारे फेसबुक पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे जो हमारे टॉपिक्स रखे गए थे, उनमें से एक टॉपिक जो हमारा ये था लैंग्वेज के हवाले से, उसमें कमेंट है सैयद कुमैल हसन का। हमें अक्सर कमेंट्स ये लिखते रहते हैं और आप भी लिख सकते हैं हमें। मैं उनका कमेंट उसको समराइज करके यहाँ पर कहना चाहूँगा कि चाइना की मिसाल उन्होंने अपने कमेंट में दी है कि चाइनीज़ ने बहुत तरक्की की है इस वक्त, और कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं कि जो अपनी ज़बान जो है उन्होंने उसी में ही अपनी स्टडीज़ को जारी रखा है, और शुरू से एंड तक उन्होंने एक ही ज़बान पे फोकस रखा है। उनमें से एक बड़ी मिसाल जो है वो चाइना है, और एक और मिसाल क्योंकि मैं मेरा काफ़ी अर्सा जो है ईरान में गुजरा है, ख़ुद ईरान भी है जहाँ पर फारसी पढ़ाई जाती है। इसमें उन्होंने जो कमेंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है वो ये है कि हमारे लिए बेसिक चीज़ जो है वो जो जो इम्पोर्टेंट है वो तरक्की करना है, किसी भी मुल्क में रहते हुए किसी भी माशरे में रहते हुए तरक्की करना है, विजडम इंटेलेक्ट और नॉलेज की उन्होंने बात की है। अब वो कोई भी ज़बान हो, बेशक वो अंग्रेज़ी है बेशक वो उर्दू है, हमें उसको देखना है कि क्या हम लोग इस ज़बान के उसमें रहते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने हमारी तरक्की में कोई कमी आ रही है इस ज़बान के मिक्सअप हो जाने की वजह से। हो सकता था कि अगर हम अपने माशरे में या अपने मुल्क में अपनी ही ज़बान को फॉलो करते और अपना सारा कंटेंट और अपनी सारी रिसर्च और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सब एक ही ज़बान में होती, हमारी अपनी ज़बान में होती, तो शायद हम बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते थे। क्या इस पे हम लोग यानी क्या इफेक्ट वो उसका है? हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट मौजूद हैं नुसरत अब्बास बुखारी, उनसे इस पर कमेंट लें। जी नुसरत।
जी मोहसिन, बात आपने सही की है कि असल मकसद इंसान का जो है वो या माशरे या सोसाइटी का तरक्की करना है। देखें, वो मैं पार्टिसिपेंट्स ने जो हमारे यूथ ने बातें शेयर की वो बहुत बहुत वैलिड और बहुत पॉजिटिव है मैम, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि या तो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या फिर हम जो है वो बिल्कुल कहते हैं, देखें दोनों चीज़ें जमा करनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कहते कि किसी लैंग्वेज को आप निकाल कर जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल बगैर उसके चलें, तो जाहिर है इंटरनेशनली भी आपको ज़रूरत है, लेकिन आप सिर्फ आपकी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कुछ नहीं कर रही है, कोई लिटरेचर नहीं हो रहा। पहले नॉवल लिख के जाते थे, अब बिल्कुल नॉवल नहीं है, पोइट्रीज खत्म हो गई हैं, और खुद आप अपने देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उन्होंने भी कहा कि आपका जो मीडिया है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया जो है वो आपका जो है वो बिल्कुल उर्दू चैनल भी हैं तो वो इंग्लिश ही हैं आधे से ज्यादा, अगर कोई सेलिब्रिटीज हैं या तो हमारे पॉलिटिशियन है सियासतदान है सब, वो भी जो आपका प्रेसिडेंट हो, जो आपका जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी लिबास भी उन्हीं जैसा पहनता है, वो जो है वो इंग्लिश में स्पीच करता है। जबकि आप दूसरे मुल्कों के पॉलिटिशियंस को देखें, जब वो कहीं जाते हैं तो वो अपनी जबान में बात करते हैं, इंटरप्रेटर होता है दरमियान में। तो यहाँ पर आपके पूरे करिकुलम को चेंज करने की जरूरत है, फिर जाकर आप अपनी जबान को अहमियत दे सकते हैं। बाकायदा इंस्टीट्यूशन इदारे बने हों जो कि उर्दू की बका के लिए हों, अदब के लिए हों, और वो आने वाली जो हमारी दूसरी एक्सपर्ट आयशा ने कहा कि वो बात सही है कि जब हम अपनी सकाफत को चाहेंगे कि जिंदा रखें तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा अपनी जबान को, वरना आने वाली नस्ल जो है वो हल्के हल्के जबान भी भूल जाएगी, और यही वजह है कि जब दूसरी जबान आप बोलेंगे तो उसका कल्चर भी जो है वो खुद ब खुद बगैर आपके जरूरत के बगैर आपके चाहे आपके माशरे में जो है पनपना शुरू हो जाएगा, और फिर वही कल्चर होगा, फिर आप एतराज करते हैं लिबास ऐसे क्यों है, हाल ऐसे क्यों है, सोचते लोग ऐसे क्यों है, उसी वजह से है क्योंकि आपने अपनी जबान को जो है वो माशरे से बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ जो आपने दूसरे कंट्रीज की मिसाल दी, चाइना हो गया, ईरान हो गया, इस तरह जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अभी भी अपनी ही जबान को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, वो अपने इदारों के अंदर अपनी जबानों को बोलते हैं, उनके टैक्स, उनकी बुक्स, उनकी डिग्रियां, सब कुछ उनकी अपनी जबान के अंदर हैं। तो ये खुद एक हुकूमती सतह पर जब तक इकदाम न किए जाए उस वक्त तक कुछ नहीं।
नुसरत अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके ओपिनियन का। हमारे पास इस वक्त ट्विटर पे एक ट्वीट मौजूद है इससे मुतालिक, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है, मैं इसको लेना चाहूँगा आपके कमेंट के उस तनाजुर में और आयशा गाजी जो हमारी दूसरी एक्सपर्ट है उनके भी कमेंट के तनाजुर में। ट्वीट है कि आप बात कर रहे हैं कि जुबान कल्चर के साथ बड़ी लिंक है, बड़ा उसका ताल्लुक है, मशरूत है, तो अपने हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में अगर आप देखा जाए तो लिटरेसी रेट भी हमसे ज़्यादा है, इंग्लिश भी वो हमसे अच्छी बोलते हैं, लेकिन अपने कल्चर को अपनी सकाफत को नेशनली भी और इंटरनेशनली भी वो बड़े फख्र के साथ प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ लैंग्वेज की तरक्की और तरवीज भी हो रही है, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं पाई जाती, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि शर्मिंदाना सा एक हमारा रवैया है अपने कल्चर के बारे में, अपने वैल्यूज के बारे में, चाहे वो सूबाई वैल्यूज हों, अकदारे हों या कि कौमी अकदारे हों। तो आपसे मैं चाहूंगा मुसद भाई, आप एक क्विक साइज पे रिस्पॉन्ड करें और फिर देन आई विल मूव टू आयशा गाजी ऑन दिस, कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों कि जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क का लिटरेसी रेट तो अंग्रेजी हमसे बेहतर है मगर कल्चर भी प्रिजर्व्ड है। जी नुसर भाई,
नहीं, इसमें अली मैं इतफाक नहीं करूंगा कि कल्चर उनका प्रिजर्व है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि मैं पिछले लास्ट ईयर भी तकरीबन 70-60-80 इंडियन स्टूडेंट्स को जब मैं कंडक्ट कर रहा था, तो वो अपनी जबान जो कम है वो ज़्यादा इंग्लिश ही बोल रहे थे और अपनी जबान के बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फिर कल्चर जो है वो कल्चर सब वहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन है, वही लिबास है, वो होलियाँ हैं, हॉलीवुड की पेनिट्रेशन है। और अगर बॉलीवुड की तो है, बॉलीवुड ने किससे तासीर ली हुई है? सारी बॉलीवुड के अंदर जितनी भी तासीर है जो आप फिल्म में अंदर देखते हैं, वो उनके मुल्कों में उसकी कोई हकीकत नहीं पाई जाती है। खुद उनके अंदर जो है वो मेल फीमेल का अट्रैक्शन जो है, उनकी यूनिवर्सिटी जो है, सब कुछ जो है, उनके यहाँ जो कल्चर है, नाइट कल्चर है, पार्टी कल्चर है, इवेंट कल्चर है, डांस कल्चर है, वो सब एक तो वेस्टर्नाइजेशन है। दूसरा, हम उनसे कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर मेजोरिटी अगर हिंदुइज्म है तो हिंदुइज्म हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। हम बीइंग एज अ मुस्लिम बहुत सारी वेस्टर्नाइजेशन को हम रिपेल करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये फर्क है, हमारी हुईयत में हमारी जो एक आइडेंटिटी है, अपना हुईयत है वो अलग है, उनकी हुईयत अलग है। वो हालांकि वो खुद कहते हैं कि हम अपनी उस कल्चर को खो बैठे के पहले जमाने में हुआ करता था, अब आप देखिए उनके यहाँ बहुत तेजी से जो वेस्टर्नाइजेशन पेनिट्रेट कर रही है।
जी बहुत शुक्रिया नसर भाई आपके कमेंट का। आयशा आपका इस पे क्या नजरिया है, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से आप, क्या आप भी नसर भाई की बात से इतफाक करेंगी या आपका नजरिया इससे मुख्तलिफ है?
इंडिया की अगर आप बात करते हैं, आप इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप इंडियन चैनल उठा कर देखिए, इंडिया के मीडिया का किरदार देखिए, उन्होंने बिल्कुल अपने एक फेड होते हुए मजहब को भी अपने ड्रामास के जरिए दोबारा से रिवाइव किया है। इसी तरह से बिल्कुल उन्होंने अपनी फेड होती हुई लैंग्वेज को भी अपने ड्रामा के जरिए दोबारा रिवाइव किया। उन्होंने अपने कल्चर को दोबारा से अपने ड्रामास के जरिए अपनी अगले जनरेशन तक पहुँचाया और बड़े फख्र के साथ पहुँचाया। आप जब मल्टी कल्चरल आप जगह पे रहते हैं, आप ये बाकायदा देख सकते हैं कि इंडियन अपने कल्चर में कितना प्राउड फील करते हैं और अपने कल्चर को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अपना ड्रामा फॉलो करते हैं। उनके ड्रामे के स्टोरी लाइन के साथ आप बेशक इतफाक करें या ना करें, ठीक है, उसमें वो जो भी है, लेकिन इस बात का क्रेडिट आपको देना चाहिए कि उनके मीडिया ने अपने कल्चर को आगे लेके जाने में कितना अहम किरदार अदा किया। अब उनके बच्चे तो क्या, उनको तो आप छोड़ दें, आप अपने मुल्क में बैठे हुए अपने बच्चों को भी देखें, वो उनकी हर मजहबी डिटेल, उनकी कल्चरल डिटेल्स और उनकी क्या पीछे रिवायात है वो सब कुछ जानते हैं। उनके कौन से भगवान है, उनका कौन सा दिन किस लिए मनाया जाता है, वो ये सब जानते हैं। आपके बच्चे भी बैठ के जानते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आपका मीडिया क्या करता है, कभी आपने ईद तक पे आपने कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा जो बहुत ही ऑथेंटिक और इस अच्छे तरीके से आपके बच्चों तक उस सारी जो आपका एक थीम है उसको आगे लेके जाए। इसी तरह से लैंग्वेजेस की भी जब बात आती है, आप इंडियन न्यूज चैनल उठा के देखें और कई दफा तो वो इतने इम्पॉसिबल इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में बहुत खूबसूरती से तर्जुमा करके बोलते हैं कि हम हैरान होते हैं देख के। उसके मुकाबले में आप अपनी अपनी न्यूज उठा के देखिए, आपको इस तरह का कोई ट्रेंड कहीं पर नहीं मिलता कि कहीं पर आप यहाँ पे ये मीडिया जो है लैंग्वेज के लिए, अपने कल्चर के लिए भी कोई काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बल्कि आपके बहुत बड़े बड़े एंकर्स बैठ के कई दफा इस तरह की उर्दू बोल रहे होते हैं कि वो उर्दू नहीं होती है। तो कम से कम कहीं पर तो हमें अपना स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। अब ये देखिए कि जब भी कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाता था तो उसको रिकमेंडेशन ये मिलती थी कि आप जाइए और बीबीसी सुन के आइए, क्योंकि बीबीसी इज द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। आप मुझे ये बताइए कि क्या हम लोगों में से कोई उर्दू सीखने जाए तो हम उसको अपना कोई भी एक चैनल रिकमेंड कर सकते हैं कि जाएं भाई आप इतने दिन के लिए पीटीवी या अपना जियो या ARY या दिस एंड दैट अपना ही सुन के आइए, ऐसा नहीं है। दूसरी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हमने आज तक कभी इसका नोटिस नहीं लिया कि पाकिस्तान में अब मैं जब देखती हूँ, मैं सबकी बात नहीं करी, जनरलाइज बात नहीं करी, एक स्पेसिफिक तबके की जो पढ़ा लिखा मॉडर्न तबका, उनके घर में तीन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अपने माँ बाप के साथ वो लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलते हैं, अपने नौकर के साथ पंजाबी बोलते हैं। आप अपने बच्चे को कोई एक लैंग्वेज तो मुकम्मल तौर पर दें, इस तरह तो आप उसको साइकोलॉजिकली एक बिल्कुल बंद कर देंगे, वो किसी भी कोई भी जुबान उसका जरिया इजहार नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए।
बहुत वैलिड नुकात उठाए आपने आयशा गाजी और नुसरत भाई आपने भी। मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, आप दोनों बल्कि तीनों जो हमारे शुरका हैं उन्होंने ये बात की कि तालीमी निज़ाम भी हमारा सारा अंग्रेज़ी में है, उसको फोकियत हासिल है, हमें बदलना पड़ेगा करिकुलम को अपनी ज़ुबान के अंदर और सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। क्या आप समझते हैं कि इस नहज पे जहाँ मतलब इस जो टाइम में हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, क्या हम इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम पहले ये करें कि अपना सारा निसाब जो है वो पहले हम ट्रांसलेट करना शुरू कर दें, तराजम उसके करना शुरू कर दें, और फिर जो है हम एडवांसमेंट की तरफ जाएं, मतलब एक पॉज इतना बड़ा हम लेने के मुतहम्मिल हैं कि पहले अब जुबान को बदला जाए तब हम तरक्की करेंगे, रादर देन कि हम यही इसको एक्सेप्ट करें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और अंग्रेजी को एक इंटरनेशनल स्टेटस हासिल हो चुका है, जुबान का इंटरनेशनल लोकल जुबान ये बन चुकी है। मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है, एक थॉट है। तो आप किस थॉट से इत्तफाक करते हैं या कोई मिड वे निकाला जाए? ऐसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है।
यहाँ पे मिसाल स्टार्ट कर, नुसरत ने इंडिया की मिसाल दी, उनकी अंदर हॉलीवुड की पेनिट्रेशन वेस्टर्नाइजेशन हो चुकी है, ये बात मानने वाली है। मतलब एक तरह से पूरी एशिया में हम लोग वेस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया की न्यूज़ चैनल्स, इंडिया का जितना मीडिया, वो इस पर इतना क्रख्त हिंदी बोलता है, वो जिसको कहते हैं ना सॉलिड वाली हिंदी बोलता है, जो आपको समझ नहीं आती है, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं और पूरा पाकिस्तान देखता है उसको। ठीक है, तो आप ही बोल सकते हैं उर्दू, किसी को समझ नहीं आया ठीक, लेकिन वो सुनेंगे आपको। बात ये कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है बोलने में। आप कहते हैं कि हमने इंग्लिश बोलनी है, सारों का समझ है और सारे मजाक उड़ाते हैं आपका, क्यों कैसे इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी आइडेंटिटी को करें कि आप माने कि आप उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज है। सेकेंड बात, ट्रांसलेशन एक ऐसा वर्ड है जो अरबी से बाकी सब जुबानों में हो चुका है, लेकिन अब हम भूल चुके हैं कि कोई चीज़ होती है। हम कहते हैं जी गूगल पर जो मिलता है कॉपी पेस्ट करो। मैं अपनी मतलब यूथ की बात कर रहा हूँ, हम लोग रिसर्च नहीं करना चाहेंगे कभी भी उर्दू में, क्योंकि कुछ अवेलेबल ही नहीं है। हम कहेंगे जी कि हमें उर्दू में मिलती है अपनी, हमारा उर्दू में कुछ रेफरेंस मटेरियल ही मौजूद नहीं है। तो आपको कुछ कहीं से तो जनरेट करना है इसके लिए कुछ, मतलब आप कहेंगे आपने आगे जाना है, तो आपको इंग्लिश उर्दू का साथ लेकर चलना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द योर डेली लाइफ। आप इसको एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग करें, आप एजुकेशन में इसकी वेटेज बढ़ाएं, आप इसको आम बच्चे तक पहुंचाएं, जिसको कहते हैं ना कि माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों तक। आप अभी भी कहेंगे ना कि अगर आप ज़्यादा दे देंगे जी मेजोरिटी उर्दू मीडियम में पढ़ें और माइनॉरिटी जिसका पैसा हो इंग्लिश मीडियम में, तो फिर कोई भी नहीं पढ़ेगा उर्दू मीडियम में। वो कहेंगे जी हमने इंग्लिश मीडियम में जाना है। वो क्यों जाए, जब उन्हें पता है कि जी आगे उनकी पूरी लाइफ में इंग्लिश है, तो वो अभी क्यों उर्दू मीडियम पढ़े, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें, तो वो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे। तो आपको ये ज़रूरत है कि आप इसको ग्राउंड लेवल पे आके सोचें और आप अपने मीडिया पे इसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि लोगों को पता चले कि उर्दू रोज़मर्रा की लाइफ में बोलनी चाहिए, ये सिर्फ किताबों में लिखे जाने के लिए नहीं है या सिर्फ शेर पढ़ने के लिए।
सिर्फ किताबों में लिखे जाने और सिर्फ शेर पढ़ने के लिए नहीं है। बड़ा खूबसूरत आपने इख्तिताम किया आपने कमेंट का एहसन। मैं इन सारी बातों से मुझे ये लगता है कि मामला इतना आसान और सहल है नहीं जितना के बयान किया जा रहा है, कि हमारा हमारे सदर मुमलिकत भी जब अपना वो हलफ उठाते हैं तो वो अंग्रेजी में होता है, उर्दू में नहीं होता। तो हमारे जुडिशरी से लेकर हमारे स्कूलों तक जो सारा का सारा निज़ाम है, ऑफिशियल निज़ाम है, वो जो है वो उर्दू के बजाय अंग्रेजी में है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो असेंबली में भी पास हुआ था कि हम इतने अरसे में उर्दू को पाकिस्तान का दफ्तरी जो है पाकिस्तान की दफ्तरी जुबान बना देंगे, वो वादे और दावे शायद हमारे खोखले ही रहे। मोहतशिम, मैं आपकी
बिल्कुल
तरफ इस बात को लेके जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस आगे डिस्कशन को लेके चलें कि इतने मैसिव तब्दीलियां हैं, इतने कैसे ये मतलब इतना आसान मामला है कि बस जुबान तब्दील करें और जुबान को प्रिजर्व करें, फख्र महसूस करें, आप आगे चले जाएंगे कैसे? कहना तो अच्छा बहुत लगता है, सुनने में भी बहुत मजा आता है, रियलिस्टिक है।
मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि सिर्फ यही नहीं है, हमारे माशरे में एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है कि अगर आप अपना आईडी कार्ड बनाने भी जाते हैं ना दफ्तर में शनाख्ती कार्ड वाले, तो उस पर जो आपको फॉर्म दिया जाता है ना,
बिल्कुल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग
वो भी
एग्जांपल जी,
अंग्रेज़ी में ही होता
वही
है।
भी। और
और जहाँ पर जो है हमारी अक्सर जो यहाँ पर ऐसी अवाम है कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जो कि अंगूठा छापने वाले होते हैं, बाहर उस ऑफिस के कुछ लोग बैठे हुए होते हैं कि जो उनसे कहते हैं हाँ जी फॉर्म फिल करवाने के लिए 10 रुपये हमें दो तो हम तुम्हारा फॉर्म फिल करेंगे। जिस सोसाइटी में ऐसा हो रहा हो और जहाँ पर गवर्नमेंट के लोकल दफातर जो हैं, जो इस चीज़ को जानते हों कि उर्दू एक हमारी कौमी ज़बान है, वो उनके फॉर्म्स भी अंग्रेज़ी में हो, जहाँ पर एक आम शख्स जो है वो ना जानता हो कि किस में क्या चीज़ फिल की जाएगी। फॉर्म फिल करना जो है ये भी एक चीज़ है, एक हुनर है जिसको हमें स्कूल्स में जो है सिखाया गया था। हम तो चले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के निकले हैं, हमें पता है क्या है, लेकिन वो लोग अब क्या, अब ये क्या सोसाइटी, अब यही डिफरेंस मैं चाह रहा हूँ कि इस पर हमारी बात ज़्यादा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम आपस कम है, कि वो जो हमारा एक सोसाइटी का जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है कि जो इस जो यानी इस चीज़ को फेस कर रहा है। ठीक है, मैं इस पे चाहूँगा कि हमारे जो गेस्ट हैं नुसरत अब्बास बुखारी उस पे अपना कमेंट दें, हमारे पास टाइम कम है नुसरत साहब, से 2 मिनट हमारे पास हैं।
देखिए, मैं बात को बस इस तरह खुलासा करूंगा कि हम बहुत बड़ी मैसिव चेंज नहीं तो नहीं ला सकते और ना वो फर्स्ट हैंड पे लाई जा सकती है। वैली की बात तो बात कहने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखने में भी अच्छी शायद लगे, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो हम कम से कम पहले स्टेप पर ये करें, कम से कम हम मोहब्बत तो करें उर्दू से, हम नेशनल तो बने। हम असल में अभी यूथ हम नेशनल नहीं है हमारी। वो बस कहती है वो पाकिस्तान क्या, वो भाई पाकिस्तान तो ये ठीक है, हालात खराब हैं, ये जो प्रॉब्लम है, लेकिन आप पाकिस्तानी तो बने। जब आप पाकिस्तानी बनेंगे तो आप फख्र महसूस करेंगे उर्दू जबान बोलना, उर्दू के लिए काम करना। कोर्स चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, सारे काम मुश्किल, लेकिन आप हल्के हल्के जब अपनी यूथ को, आने वाली नस्ल को ये यकीन करा दें कि देखें जी, जबान हमारी उर्दू है, हम इसको फख्र से महसूस करते हैं, चाहे वो फिर इंग्लिश में पढ़े, चाहे वो फ्रेंच में पढ़े, चाहे वो जर्मन पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पढ़ते रहें। लेकिन साथ साथ इदारे जो हों जो कि उर्दू की जबान की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो है वो ये जबान जो है वो हमेशा कायम रह सके और आगे तक चली जा सके।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास टाइम बाकी नहीं बचा है। हमारा दिल था कि हम आयशा आपकी तरफ मूव करते और आपसे आपकी एक्सपर्ट राय लेते इस पर। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में, फिर किसी मौजू के लिए आपको हम लोग दावा देंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका आयशा कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की और अपना खास अपना टाइम निकाला इस प्रोग्राम के लिए, और एहसन आपका भी और हमारे एक्सपर्ट नुसर साहब का भी जो हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकालते हैं। नाज़रीन, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा हमारे फेसबुक के पेज पे और हमारे ट्विटर और गूगल प्लस पे भी। हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, उस पर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अरी को और मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।